का स्वाध्याय चल रहा है, उसके अंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है कि सम्यक दर्शन आठ अंग से सहित निरतिचार निर्दोष होता है और उसका पालन करने वाले मोक्ष महल पर चढ़ने के प्रथम अधिकारी बन जाते हैं। तो मंगलाचरण के साथ अब उस स्वाध्याय को प्रारंभ करती हूँ। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का, नमहु त्रियोग समार के। मन वचन काय इन तीनों योगों को एकाग्र करके अपने आत्मा के अंदर छिपे परमात्म तत्व को, जो मोक्ष का साकार स्वरूप है, उसकी शक्ति को ही नमन किया है और संसार भ्रमण करते ही करते भी ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर सकता है। तीसरी ढाल चल रही है, 12 नंबर के श्लोक में आएंगे। जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा माने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे तत्व कु तत्व पिछाने। निज गुण अरुपर अवगुण ढाके वाजिन धर्म बढ़ावे, कामादिक कर प्रशिते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं रख करके और उनके उपदेश में अटल श्रद्धान करना, यह निःसंकित अंग हुआ जिसमें आपने अंजन चोर के कथानक को सुना और निःसंकित अंग को पालन करने की प्रेरणा प्राप्त की। अब दूसरा अंग है भाव सुख वांछा भाने। उसके पहले शब्द है ब्रश। ब्रश माने धर्म, यानी धर्म करते हुए, धर्म का सेवन करते हुए उसके बदले में भव सुख माने संसार के सुखों की इच्छा नहीं करना, यह हुआ निकांक्षित अंग। कांक्षा माने आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा। तो धर्म का सेवन इसलिए नहीं करना कि हमें चक्रवर्ती का पद मिल जाए, हमें ऐसे ऐसी वैसी संपत्ति मिल जाए, भौतिक संपत्ति मिल जाए, उन सुखों की आकांक्षा न करके अपनी आत्मा के कल्याण की भावना करना, ये निकांक्षित अंग है। पहले एक दर्शन स्तुति हुआ करती थी, उसमें पढ़ते थे चक्री का पद नहीं चाहूं, विषयनि में नाहीं लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे परमात्म निज पद दीजे। अर्थात हे भगवान, मैं चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहता, ये क्यों कहा? आपकी भक्ति के बिना या आपके चरण कमलों से दूर रह करके मुझे चक्रवर्ती का वैभव भी नहीं चाहिए। विषयनि में ना ही लुभाऊं, मैं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में नहीं लुभाने पाऊं, अर्थात उसी के अंदर ना रमने पाऊं, मेरे राग द्वेष आदि दोष हर लीजिए और परमात्म पद दे दीजिए। अर्थात परमात्म पद का मुख्य लक्ष्य रहता है। तो निकांक्षित अंग भी तो यही कहता है कि तपस्या करते हुए, धर्म करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भाव सुख की वांछा आगे नहीं करना चाहिए। यही नीकांक्षित अंग होगा। हम सबको भी जितना बन सके उतना इस अंग का पालन करते हुए अपने धर्म के बदले में ऐसा कुछ भी सांसारिक भोग नहीं प्राप्त करना चाहिए। धर्म करते समय केवल एक ही इच्छा रहे मन में, मोक्ष की प्राप्ति हो भगवन, पाप किंचित न हो तन से। न वैभव चाहूं स्वर्गों का, नहीं चक्री की संपत्ति। न वैभव चाहूं स्वर्गों का, नहीं चक्री की संपत्ति, वो केवल ध्यान प्रभु तेरा, यही मेरी है संपत्ति है। वो केवल ध्यान प्रभु तेरा, मेरी त्रैलोक की संपत्ति। पलेगा सम्यक दर्शन का, तभी नीकांक्षित अंग मेरा, अनंत मति कन्या के सदृश रहे मजबूत मन मेरा। इन्हीं की छवि आज के ज्ञान मति माता में दिखती है। किनकी? अनंत मति, अनंत मति कन्या जो चंपापुर के राजा प्रियदत्त और अंगवती सेठानी की कन्या थी। उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था, माता पिता के साथ अष्टांगिका पर्व में लिया, लेकिन पूरे जीवन पालन करने का भाव बनाया। एक बार एक विद्याधर ने उसको हरण कर लिया। किसी किसी तरह से अपने शील की रक्षा करते हुए वह कन्या अयोध्या में आई। अयोध्या में एक आरिका माता के पास थी और एक सृष्टि के घर में चौका लगा। वहां सृष्टि के आमंत्रण पर उसने जाकर घर के बाहर चौक बनाया। चौक बनाने की परंपरा होती है ना, साधु संत जाते हैं तो उनके लिए चौक बनाते हैं। अकस्मात होता क्या है कि एक दिन उसके माता पिता ढूंढते ढूंढते अयोध्या आ गए, और अयोध्या में उस चौक को देख करके एकदम उस घर में प्रवेश किया। सेठ जी ने उनका स्वागत किया और उन्होंने एक पथिक के नाते अपनी आप बीती कहानी बताई कि मेरी कन्या अपहरण की गई है, मैं कितने दिनों से खोज रहा हूँ, आज यहाँ आया हूँ। वह भी दुखी थे, सेठ जी भी दुखी थे। अकस्मात वे कहते हैं, सेठ जी ये चौक किसने बनाया, बड़ा सुंदर चौक है। उस घर के धनी ने कहा, यहाँ पर एक माता जी हैं, उनके पास एक कन्या रहती है, उसने ये चौक बनाया। बोले मुझे उसको दिखाओ। जब उस कन्या से मिलन होता है तो पिता पुत्री का मिलन हो जाते हैं, यानी वो कन्या अनंतमती थी। पिता बहुत खुश होते हैं और कन्या से कहते हैं, चलो अब चंपापुर चलो बेटा, आपने घर में रहना। वह कन्या कहती, पिताजी अब मैंने संसार देख लिया, मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, मुझे किसी प्रकार के भोगों की कोई आकांक्षा नहीं है। कई तरह की परीक्षा उस सती के जीवन में आई, लेकिन उसने कभी भी किन्हीं भोगों की आकांक्षा नहीं की। उसी अनंतमती सती का इस कविता के अंदर उल्लेख किया गया है। अनंतमती कन्या के सदृश रहे मजबूत मन मीरा, उन्हीं की छवि आज की ज्ञान मती माता में दिखती है। बड़ी दृढ़ता सिखाती है, ग्रंथ भी खूब लिखती है। बड़ी दृढ़ता सिखाती है, ग्रंथ भी खूब लिखती हैं। आज के इस महाकलयुग में भी सम्यक तो संभव है, आज के इस महाकलयुग में भी सम्यक तो संभव है। नहीं बाजार में मिलता, न केवल पुस्तक में ये है। नहीं बाजार में मिलता, न केवल पुस्तक में ये है। सम्यक दर्शन ना कोई बाजारू चीज है, ना किसी पुस्तक के अंदर है। गुरुओं के उपदेश से, ग्रंथों के स्वाध्याय से जरूर सम्यक दर्शन मिलता है, लेकिन उसका सूक्ष्मता से यदि पालन किया जाए तो, यानी धर्म करें लेकिन उसके साथ भोगों की आकांक्षा ना करें। तो आगे कहा, नामती से पाने को गुरु चरणों में आ जाओ, तुम सब भी से पाने को गुरु चरणों में आ जाओ। रहो संसार में, संसार को अपने में मत लाओ। रहो संसार में, संसार को अपने में मत लाओ। समझ गए? संसार पूर्वक तो मोक्ष ही है। सबको मोक्ष जाने से पहले पहले संसार में ही रहना पड़ता है, लेकिन हे भव्यात्मन, संसार में रहकर संसार को अपने मन के अंदर मत बसा लो। इतना राग द्वेष मत करो कि संसार पूरी तरह से अपनी आत्मा में बस जाए और फिर संसार का अंत ही ना होने पाए। तो धर्म करते हुए, सम्यक दर्शन का पालन करते हुए, पर का उपकार करते हुए, कभी बदले की भावना मत करो कि मैंने इसका उपकार किया लेकिन मेरे साथ इसने अपकार किया, या आगे मुझे इस तप के कारण, इस साधना से, इस संयम से मुझे चक्रवर्ती आदि का वैभव मिल जाए। बस यही निकांक्षित अंग है। तो एक हुआ निसंकीतन और दूसरा हुआ निकांक्षित अंग, अब तीसरा है निर्विचिकित्सा अंग। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कु तत्व पिछाने। इसमें दो अंग आ गए, एक निर्विचिकित्सा अंग और एक अमूढ़ दृष्टि अंग। तो निर्विचिकित्सा अंग माने विचिकित्सा माने ग्लानि, और निर्विचिकित्सा माने ग्लानि नहीं करना। किसमें ग्लानि नहीं करना? मुनियों के मलिन तन को देख करके और उनके प्रति ग्लानि घृणा नहीं करना। तन से वे मलिन हो सकते हैं लेकिन मन से वे एकदम उज्जवल, स्वच्छ, पवित्र होते हैं। इसीलिए तो कहा कि ब्रह्मचारी सदा शुचि ही। ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महामुनिराज हमेशा पवित्र रहते हैं। आप देखो, स्नान नहीं करते तो भी जाके भगवान को छूते हैं कि नहीं? क्योंकि रत्नत्रय से उनका शरीर सदा पवित्र है। इतना पवित्र है कि उनके शरीर से उनके पार्थिव शरीर की भी वंदना करते हैं, उनके पार्थिव शरीर की भी वंदना करते हैं भक्ति पाठ करके। सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति आदि पढ़ करके वंदना करते हैं। ऐसा जो पवित्र रत्नत्रय से पवित्र शरीर है, ऐसे मुनियों के मलिन शरीर में भी घृणा नहीं करना। तो निर्विचिकित्सा अंग का पालन हो जाता है। भाई, सम्यक दर्शन इस पंचम काल में हो सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि हमें सम्यक दर्शन हो गया, अब उसके अंदर निर्मलता कैसे आए? कभी कभी दोष लग जाते हैं, अतिचार लग जाते हैं, कहीं हमने किसी की प्रशंसा कर दी, कहीं बिना कारण हमने कुगुरुओं की संगति कर ली, तो सम्यक दर्शन में मलिनता आ जाती है। या अच्छे भले मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि आ गई, नहीं, चिकित्सा यानी ग्लानि नहीं करना, यही निर्विचिकित्सा अंग है। जगत में सज्जन और दुर्जन सभी रहते सदा से हैं। जगत में सज्जन और दुर्जन सभी रहते सदा से हैं। तभी कुछ लोग अच्छे और बुरे की पहचान करते हैं। अगर रातें नहीं होती तो दिन की कीमत ना होती। अगर रातें नहीं होती तो दिन की कीमत ना होती। अंधेरे से ही उजियाले का हम एहसास करते हैं। अंधेरे से ही उजियाले का हम एहसास करते हैं। रात के बाद दिन आता है, जब अंधकार है तभी उजाले की कीमत होती है, उजाले का मूल्यांकन होता है। इसी प्रकार से अगर दुर्जन ना हो तो सज्जन की कीमत कैसे होगी? तो सज्जन और दुर्जन हमेशा रहते हैं। निर्विचिकित्सा अंग की बात कर रही हूँ। ग्लानि करने वाले, घृणा करने वाले एक से एक हैं। और दूसरों की सेवा करने वाले वो भी बहुत है। देखो आज भारत देश और दुनिया भर के अंदर क्रिश्चियनिटी क्यों छा गई, क्यों छा गई कि सड़क चलते अगर एक कुत्ता भी बीमार है तो उसको भी ला करके साफ सफाई करके उसकी सेवा करते हैं। सेवा धर्म को उन्होंने अपना प्रमुख धर्म बना लिया। आज पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी छा गई। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप पाप से घृणा करो, पापी से मत करो, यानी गुणों को ग्रहण करो, अवगुणों को छोड़ दो। यही तो निर्विचिकित्सा अंग है। और फिर रत्नत्रयधारी मुनियों के प्रति, उनको तो जितना सेवा कर दें उतना ही अच्छा है। नहीं नफरत करो उनसे बुरे जो तुमको लगते हैं, नहीं नफरत करो उनसे बुरे जो तुमको लगते हैं, जो तुमको अच्छे लगते वे बुरे भी तो हो सकते हैं, जो तुमको अच्छे लगते वे बुरे भी तो हो सकते हैं। हम हमारी किसी से मित्रता है, वे हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर भी तो कोई बुराई होगी, और हम जिनको बुरा समझते हैं उनके अंदर भी तो कोई अच्छाई होगी, तो अच्छाई की कीमत करें। ना कुछ अच्छा बुरा जग में ये सब चिंतन की बातें हैं, ना कुछ अच्छा बुरा जग में ये सब चिंतन की बातें हैं, यदि हम अच्छे हैं तो सब हमें अच्छे ही लगते हैं, यदि हम अच्छे हैं तो सब हमें अच्छे ही लगते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। एक सासू ने आके हमसे कहा कि माता जी मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमने कहा देखो आप अच्छी हो इसलिए बहू भी अच्छी है, थोड़ा बुरा बर्ताव करके देखो फिर क्या होता है, कोई भी बुरी हो जाएगी। कितने ही लोग जब एक दूसरे की बुराई करते हैं तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए अगर हम अच्छे बन जाएं तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। इसलिए एक लेखक ने लिखा, देयर इज नथिंग गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अर्थात कोई भी चीज संसार के अंदर बुरी नहीं, अच्छी नहीं, हमारी सोच अच्छा और बुरा उसको बना देती है। आज ये पंखे हमें अच्छे लग रहे हैं, पंखे वही रहेंगे लेकिन सर्दी में इनकी हवा बुरी लगने लगेगी, है कि नहीं? तो अपनी सोच को बदलना, यदि हम अच्छे हैं तो सब लोग अच्छे ही हैं। सबसे अपवित्र है अपनी काया उसको करो पावन। सात धातुओं से अपावन अशुचि अपवित्र शरीर है, मलमूत्र का घर है। सबसे अपवित्र है अपनी काया उसको करो पावन, रत्न त्रयधारी मुनियों का सदा रहता है तन पावन, रत्न त्रयधारी मुनियों का सदा रहता है तन पावन। राजा उदयन के सदृश है न मुनि के प्रति घृणा करना। राजा उदयन प्रसिद्ध हो गए, देवता भी उनकी परीक्षा करने आए, मुनि का वेश धारण करके बड़ी भक्ति से आहार दिया, उन्होंने तुरंत बड़ी दुर्गंध युक्त वमन कर दिया। लेकिन एकदम निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हुए उदयन राजा ने उनके शरीर को साफ किया और अपनी निंदा की, आज जरूर मेरे आहार में कोई कमी है। मुनि वेशधारी देवता ने अपना रूप प्रकट करके कहा कि जैसा हमने आपकी प्रशंसा सुनी थी हे राजा उदयन, आप वैसा ही निकले। इसलिए राजा उदयन को संतों ने भी अपने ग्रंथों के अंदर स्थान दे दिया कि निर्विचिकित्सा अंग पालन करना आए तो राजा उदयन के समान पालन करो। राजा उदयन के सदृश न मुनि के प्रति घृणा करना, सभी निर्विचिकित्सांग चंदनामती हृदय रखना, सभी निर्विचिकित्सांग को अपने हृदय रखना। ऐसे निर्विचिकित्सा अंग को अपने हृदय में रखना, हमारा सम्यक दर्शन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, निरतिचार निर्दोष हो जाएगा। एक सूक्ति कही मैंने आज ही इसको पढ़ा, बर्न ऑल द बैड मेमोरीज ऑफ योर पास्ट एंड ड्रेस अप द कलर ऑफ योर स्वीट मेमोरीज, लव हैप्पीनेस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल्स। आप अपनी बैड मेमोरी जितनी है उनको जला दो, और अच्छी मेमोरी जितनी है जीवन की उनको ड्रेस अप, उनके साथ एकदम अपडेट हो जाओ। और उन अच्छी अच्छी मेमोरीज को, हमने कब भक्ति की, हमने कब यात्रा किया, हमारे को कब किससे अच्छा अच्छा प्रेम मिला, हमने कौन से मित्र का उपकार किया, हमारे को किसने उपकृत किया, ये सब स्वीट मेमोरीज हैं। उससे संसार के अंदर, अपने शरीर के अंदर हैप्पीनेस, खुश खुश होंगे आप, खुशी आएगी। एक दीदी आई यहाँ पर, उन्होंने कहा हम हैप्पी हार्मोन्स पे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा। कभी छिल्लक ध्यान सागर महाराज जी के साथ में है, ब्रह्मचारिणी जय प्रदा जी हैप्पी हार्मोन्स पे पीएचडी कर रही हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स कब बनते हैं, जब कोई भक्ति करता होता है, जब कोई ध्यान करता होता है, जब भगवान की पूजा करते होते हैं, उस समय सारी पॉजिटिव ऊर्जा आत्मा के अंदर एकत्रित हो जाती है, और तब हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, तब हमारा ऑरा एकदम अच्छा हो जाता है। जब हम गलत गलत चिंतन करते हैं तो अपना ऑरा जो है वो बदल जाता है, वो गलत गलत हो जाता है। और इसके जब फोटोज खींचे गए तो पाया गया कि एकदम खूब बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले के का ऑरा, उसकी फोटो, ऑरे का फोटो एकदम गंदा आया। और एक जंगल के अंदर बैठे मलिन तन वाले साधु का ऑरा खींचा गया, एकदम क्लीन आया, क्योंकि वो ध्यान में लीन थे। और तब आश्चर्य हुआ कि जब मांगी तुंगे के अंदर ज्ञानमती माता जी विराजमान थी, एक 22 स्केल, 22 नाम के वैज्ञानिक के स्केल को लेकर के एक सज्जन आए मकराना से, और उन्होंने भगवान ऋषभदेव, 108 फुट के ऋषभदेव की ऊर्जा नापा। उन्होंने कहा कि जब भगवान का अभिषेक नहीं हुआ था उस समय ऊर्जा 90,022 स्केल थी, और जब अभिषेक हो गया, शांति धारा हो गई, तब वो 1,10,000 उसमें ऊर्जा आ गई। अब वो नीचे आए, हमें तो पता ही नहीं था, ज्ञानमती माता जी के पास कुछ वो यंत्र रख रहे थे, बार बार हटा रहे थे, बार बार रख रहे थे। हमने कहा भैया क्या बात है, बोले मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ज्ञानमती माता जी का ऑरा, ज्ञानमती माता जी की ऊर्जा 90,022 स्केल है। आज तक हमने किसी का भी नहीं पाया, अधिक से अधिक 25,022 स्केल तक ऊर्जा पाई है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहीं स्केल तो गलत नहीं है, दसियों बार उन्होंने रखा तो 90,022 स्केल की ऊर्जा नापी। हमने कहा भैया आश्चर्य मत करो, जिनके हृदय के अंदर क्षण क्षण पल पल ऋषभदेव भगवान का वास है, जो करोड़ों अरबों बार भगवान ऋषभदेव के नाम मंत्र को जप चुकी हैं, जिनका ऑरा आप चाहे कहीं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से नाप लेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी दुर्गुण को पनपने नहीं दिया, दुर्गुणी के लिए भी हमेशा उन्होंने अच्छी भावनाएं की, आप बताओ उनका ऑरा खराब कैसे हो सकता है। अगर 90,022 स्केल उनकी ऊर्जा आ गई तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो महानुभाव, ऐसे सम्यक दर्शन को निर्मल करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, क्योंकि आज विज्ञान का युग है, पुण्य की बात जब कोई नहीं जानता तो भी कम से कम बॉडी की एनर्जी को तो सब लोग स्वीकार करते हैं। आप अशांत हैं, देखो कितनी वीकनेस महसूस देगी, आप खुश हैं, आपको एकदम उपवास करने के बाद भी एकदम एनर्जी आएगी, क्योंकि हमने उपवास का मन बनाया है, हम मन के अंदर खुश हैं, क्या हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो आपकी उपवास के अंदर भी ऊर्जा मिलती है। यही तो है सम्यक दर्शन, यही पॉजिटिव ऊर्जा है, यही हैप्पी हार्मोन्स की बात है। तो आप सब सम्यक दर्शन के अन्य अंगों को, आज हमने आपको 3 अंग की बात बता दी, कल निशंकित अंग की बात करी थी, आज निकांक्षित और निर्विचिकित्सा अंग की बात करी है। तो इन अंगों का यथाशक्ति पालन करते हुए अपने व्यवहार सम्यक दर्शन को दृढ़ करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझे। इसी सम्यक दर्शन की दृढ़ता के लिए ही मैं समझती हूँ आज अयोध्या में आप सब आए हैं किस लिए? इंद्रध्वज विधान को करने के लिए। क्यों उलास जी? कि हमें इंद्रध्वज विधान के माध्यम से अयोध्या में रहते हुए भी हम मध्य लोक के तमाम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे, रोज ज्ञानमती माता आपको यात्रा कराएंगी। कैसी यात्रा? आज जम्बूद्वीप के सुमेरु पे चल रहे हैं, कल धाती खंड के द्वीप के, परसों पुष्करार द्वीप के। ऐसे जब हम धरती पर रहते हुए आसमान की यात्रा करेंगे, अकृत्रिम चैत्यालय की अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, तो निश्चित रूप से अपना सम्यक दर्शन पवित्र होगा। ये सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, यही आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जलोदात सांग मई जिनवाणी माता की जय।